कि ब्रह्मा जी का जो कि एक दिन है, जो कि जीवों में अग्रणी जीव है, सबसे बड़े जीव ब्रह्मा है, सबसे पुराने, सबसे पौराणिक, वो ब्रह्मा जी 12 घंटे के अंदर 14 मनु की रचना करते हैं, 14 मनु, स्वयंभू मनु, स्वरचिष्ठ मनु, सावर्णी मनु, ऐसे 14 मनु की रचना करते हैं। ऐसे मनु जब 71 बार चतुर्युग में चले जाते हैं, तब जाकर के चतुर्युग का मतलब समझते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं सतयुग है 17,28,000 वर्षों का, त्रेता युग है 12,96,000 वर्षों का, द्वापर युग है 8,64,000 वर्षों का, और कलयुग है 4,32,000 वर्षों का। ये जब 43,20,000 साल का चतुर्युग दिव्य युग घूम जाता है 71 बार, तब फिर समाप्त होता है एक मनु। और ऐसे 14 मनु जब समाप्त होते हैं तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे समाप्त होते हैं, और फिर इतनी ही रात्रि आती है। तो सोच के देखिए कितना लंबा समय काल है ब्रह्मा जी का। और ऐसे ब्रह्मा जी के प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अगर और सरलता से समझना चाहें तो ये जो चतुर्युग है इसको अगर 1,000 बार घुमा दिया जाए तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे गुजर जाते हैं, और फिर उतनी ही रात्रि 12 घंटे की गति फिर 1,000 बार घूम जाते हैं। तो जितनी देर रात्रि रहती है सारी जीवात्माएं वो प्रलय काल के अंदर सुप्त अवस्था में रहती है अपने अपने कर्मों के अनुसार, और फिर जब दोबारा से सतयुग दिन शुरू होता है तो फिर ये सभी आत्माएं अपने अपने कर्मों अनुसार फिर से शरीर प्राप्त करती। तो बहुत ही खतरनाक है। एक बार वो लोमेश ऋषि से नारद मुनि ने कहा, लोमेश ऋषि आप जो है ना ये हमेशा मैं देखता हूं जप करते रहते हैं, और कभी कभी धूप लगती है तो अपने सिर पे ना घास रख लेते हैं पोटली बना करके, आप कोई कुटिया बना करके भजन क्यों नहीं करते? तो लोमेश ऋषि कहते देखो समय बड़ा कम है, जब समय कम होता है तो घर वर बनाने का टाइम नहीं होता है, क्योंकि भजन करना जरूरी लगता है। कहा अच्छा आपकी मृत्यु नजदीक है? कहा मेरी मृत्यु नजदीक है। कहा कितनी नजदीक है? तो उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी जो है ना वो जीवित रहते हैं कितने समय काल तक, एक दिन आपको भी बताया हमने, ऐसे 365 दिन और उसके 100 वर्ष। जब एक दिन गुजरता उसको कल्प कहते हैं, तो मतलब 36,500 कल्पों तक एक ब्रह्मा जीवित रहते हैं। 36,500 कल्प जब बीत जाते तो ब्रह्मा मर जाते हैं। तो भगवान ने बोलते हैं लोमेश ऋषि मेरी सेवा लगाई है, मेरे शरीर पे सबसे ज्यादा रोम है इसलिए मेरा नाम है रोमेश, है ना, और बाद में अभ्रंश होकर लोमेश नाम से मुझे बुलाया जाता। तो जब एक ब्रह्मा गुजर जाते हैं तो जब किसी की डेथ होती है तो क्या करते हैं, सिर का मुंडन कराते हैं। तो मुझे सेवा मिली है कि अपना शोक व्यक्त करो, तो मैं अपना एक शरीर का रोंगटा तोड़ता हूं और शोक व्यक्त करता हूं, ओहो ब्रह्मा गुजर गए, फिर मैं अपना जप करने लेता हूं। तो फिर बोले आपकी मृत्यु कब आएगी? बोले मेरे शरीर पर जितने रोम है ये जब समाप्त हो जाएंगे तो मेरी मृत्यु होगी। और वो क्या कहते हैं, उनका स्टेटमेंट क्या है शास्त्रिक, मेरे पास समय और हम क्या कहते हैं बहुत टाइम है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अरे जल्दी जल्दी क्या करना प्रभु जी, अभी तो जीना बरसो, बहुत टाइम है हमारे पास, टाइम नहीं है। इसको जितनी जल्दी होगा, जितनी जल्दी हम समझ पाएंगे कि जैसे जैसे ये समय बीतता जा रहा है, आप देखिए कि द्वापर युग से कलयुग प्रारंभ होने के समय को संध्या का समय कहते हैं, और जो संध्या का समय 15,000 वर्षों का होता है, जिसमें से 5,000 साल बीत गए, अभी 10,000 साल बाकी है। 10,000 सालों तक कुछ कुछ रोशनी दिखाई दे रही है धर्म की, और फिर धीरे धीरे पूरी रोशनी समाप्त हो जाएगी, अंधकार ही अंधकार होगा। कलयुग 4,32,000 सालों का है। वापिस आना चाहते हैं? कितने लोग आना चाहते हैं जल्दी जल्दी बताइए। जब वापिस नहीं आना चाहते तो जल्दी जल्दी क्या करना चाहिए? अरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ये मंत्र जितना ध्यान पूर्वक जपेंगे उतनी जल्दी हम समझ पाएंगे कि ये संसार जो है ना वो छोड़ने योग्य है, पकड़ने योग्य नहीं है। सब लोग अपने घर में लॉकर के अंदर पैसा रखते रहते हैं, बिजनेस बढ़ाते चले जाते हैं, नौकरी में प्रमोशन ढूंढते रहते हैं, और हमेशा पैसा 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 पूरा सिर पे हावी हो जाता है पैसा। लेकिन क्या पैसा हमारे जीवन की मूल्यवान वस्तु हरिनाम हमको दे सकता है? हमारे मृत्यु के अंदर क्या हमारा पैसा हमारी मदद कर सकता है? फिर भी लोग पैसे को इतना पकड़ते हैं कि सत्ययुग के जमाने में, यहां पर प्रभुपाद लिखते हैं कि सदाचार, वैष्णव सदाचार, एक दूसरे से प्रेम विलाप करना, एक दूसरे को गले लगाना, दूसरे के दुख में साथ खड़े हो जाना, सदाचार था, ज्ञान था लोगों के पास में। और लोग ऐसा करते थे कि जितना भी धन कमाते थे वो क्या कहते थे, किसका है? भगवान आपका है, मेरा कुछ नहीं है। सत्ययुग का जमाना ऐसा होता है। त्रेता युग जब बढ़ा तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि पाप ने प्रवेश किया। तो पाप प्रवेश किया था त्रेता युग के अंदर, जब रावण जैसे राक्षस हावी हो गए थे। त्रेता युग में पाप प्रारंभ होता है। और फिर उस समय लोग क्या करते थे कि धन जितना भी था एक गोलाकार चक्कर बना के बीच में खड़े हो जाते थे, बोले प्रभु मैं हवा में उछालूंगा, जितना गोले के अंदर गिरा वो मेरा, जो बाहर गिरा वो। तो चक्कर छोटा सा बनाते थे, अंदर क्या गिरता था, कुछ एक अंश गिरता था, बाकी सब भगवान का। द्वापर युग बढ़ा, पाप बढ़ने लगे, द्रौपदी का चीरहरण होने लगा, पांडव जैसे भक्तों को और साम्राज्य से बाहर निकाला गया, पाप इतना बढ़ गया। लोगों ने कहा गोलाकार चक्कर बनाया, धन को ऊपर उछाला, बोले बाहर गिरा वो मेरा, जो अंश अंदर गिरा वो तेरा ठाकुर जी। ऐसे पापी बढ़ गए। और जब कलयुग बढ़ा तो कलह का युग, इस कलयुग का नाम है कलह का युग, हर घर घर में कलह हो रही है। और कुछ लोग कहते हैं कलयुग का मतलब है कल का युग, बोले जब कर लो बोले कल करेंगे, गीता पढ़ लो बोले कल, डिस्ट्रीब्यूट कर दो बोले कल, सुदामा सेवा कर दो बोले कल, हर चीज कल करते हैं इसलिए कलयुग। और कुछ लोग कहते हैं मशीनरी को भी कल पुर्जा कहते हैं, तो मशीनरी का युग है, सबको स्मार्टफोन, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक पसंद है, कल युग। तो कलह का युग, मशीनरी का युग, और हर चीज कल पे टालने वाला युग है कलयुग। इसमें पाप इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, अधर्म ही अधर्म, कि व्यक्ति ने गोला बनाना ही छोड़ दिया, और सारी चीजें जो उसका धन आया ऊपर उछाला, बोला हे ठाकुर जी जो तुम पकड़ सको वो तुम्हारा, जो नीचे गिरा वो हमारा। नीचे क्या गिरा, सब कुछ गिर गया। और फिर गाते रहते तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बड़े भाव में गाते हैं तेरा तुझको अर्पण। ये शरीर भी हमारा नहीं है, किसका है? भगवान। और सेवा में लगाने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है। फिर आगे एक और, कितना हम ऐसे झूठ बोलते रात दिन, उसे भजन कहते हैं, हम क्या गाते हैं, तुम स्वामी हम कहा हो सेवक, सेवा के लिए बुला के देखे जरा प्रभु जी, पता चल जाएगा सेवक हम सिर्फ नकली हैं। नकली व्यक्ति कभी भक्त नहीं होता है, चाहे वो कितनी घी की बत्तियां खराब कर दे व्यक्ति। सच्चा व्यक्ति है जो बोलता है वो शब्दों पर जीवन जीता है। अगर तुम स्वामी हम सेवक, तो सेवक जैसी भावना रखो। सेवक कभी किसी को ऑर्डर देता है क्या कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए? स्वामी को ऑर्डर कभी नहीं देता है, लेकिन हम ऑर्डर देते हैं, प्रभु ये इच्छा पूरी करोगे तो तुम भगवान, वरना तुम भगवान नहीं हो। तो हमको ये समझना है कि जो ये ब्रह्मा जी हैं इनका समय बहुत बड़ा है, लेकिन भगवान के लिए कैसा है, करण सागर पे भगवान लेटे हुए हैं और उनके शरीर से रोमकूप से असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं, और हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी हैं। और वो ब्रह्मांड कैसे बंद हो जाता है, कृष्ण के लिए ऐसे बंद हो जाता है जैसे बुलबुले के समान, कि निकला टप टप, इतनी देर के लिए बुलबुला प्रकट हो रहा है ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी का जीवन आपने सुना, और उसमें हम एक छोटे से जीव जिसकी आयु मुश्किल से 60 साल 100 साल, वो व्यक्ति पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, मैं तो पता नहीं, अरे प्रभु जी उसने मुझसे ऐसे बोला, अभी मुझे जानता ही क्या है, मुझे जानता कहां है। सच्चाई ये है कि वो तो तुझे जानता ही नहीं जानता है, तू खुद भी अपने आप को कुछ नहीं जानता है कि तू कौन है। जानता ही नहीं। कहते हैं शास्त्र, कहते हैं तब इच्छा करे ब्रह्मा सृजन, तब इच्छा करे विष्णु पालन, तब इच्छा करे शिव संहार, तब इच्छा करे माया अंधकार। माया का अंधकार भी उसी की इच्छा से है, शिवजी का सृजन, शिवजी का संहार भी उसकी इच्छा से है, विष्णु का पालन भी उसकी इच्छा से है, और इस संसार की सृष्टि करने की इच्छा ब्रह्मा जी के पास जो है वो भी भगवान के पास में। कौन है वो? कृष्ण। कृष्ण जो है वो मेन कॉज है, उत्पादन कारण भगवान है, निमित्त कारण ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि बनाने वाले। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ब्रह्मा जी उसके निमित्त कारण है, विष्णु जी उसके निमित्त कारण है, शिव जी उसके निमित्त कारण है, उसके उपादान कारण कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण। इसीलिए भागवत श्रीमद भागवत के प्रथम श्लोक में ही वर्णन किया गया, वेदव्यास जी मंगलाचरण में लिखते हैं, जन्मादि यस्य यतो अन्वयात इतरतम चा अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। भगवान कौन है? अभिज्ञ, ज्ञ नहीं है, हमारी बुद्धि से समझ में आने वाले नहीं है, और स्वराट है, स्वतंत्र है। कोई व्यक्ति बोले मैं कृष्ण को बांध लूंगा, मुश्किल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान को बांध नहीं सकते, हम बस समझ सकते हैं, हम कभी बांध नहीं पाएंगे भगवान। अभिज्ञ स्वराट, स्वराट मतलब होता है स्वतंत्र। लेकिन ऐसे स्वतंत्र भगवान भी कभी कभी बंध जाते हैं। किससे बनते हैं?
भक्तों से।
तो भक्त बड़ा हुआ कि योगी बड़ा हुआ? तो फिर काय को पार्क में जाके सांस फुलाते हो, योगा करते रहते सारे जी। देखो एक व्यक्ति से हमने बोला कि आप इतनी योगा करते हो, क्या क्यों करते हो? कह रहा है कि ये योगा जब करते हैं ना, इस योगा करने से मेरी मेरी जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं। मैंने इतनी शराब पी मेरा लीवर खराब हो गया। तो मेरे को बाबा जी ने कहा आप ना ये कपाल भाती करो, आपका लीवर ठीक हो जाएगा। तो हमने पूछा कि अगर लीवर ठीक हो गया फिर क्या करोगे? बोला प्रभु जी वही दिन का एंजॉय कर रहा हूं, फिर से पीना प्रारंभ कर दूंगा। बताओ, योग ये कार्य करा रहा है। योग का मतलब है भगवान से जुड़ना, वो स्वतंत्र भगवान को बांधने की शक्ति भी भक्त के पास में। भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीन हो, भक्त जैसे ही पुकारता है मैं बंध जाता हूं उसके भाव में, उसकी पुकार से बंधा हुआ हूं मैं। लेकिन हम भगवान को बांधना ही नहीं चाह रहे तो भगवान कैसे बंधेंगे? हरे कृष्णा। आगे कहते हैं तेने ब्रह्म हृदयादि कव्ये ज्ञान दिया। तो ये भगवान ने क्या किया? तेने ब्रह्म हृदयादि कव्ये मोयन्ति यत् सूरया। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ज्ञान कैसे आया? भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान कैसे दिया इस सृष्टि रचने का? ऐसे करके शंख बस भगवान ने ब्रह्मा जी के सिर पे छुलाया और उनको चार श्लोक भागवत के सुनाए। चतुर्श्लोक की भागवत सुनते ही क्या हुआ? ब्रह्मा जी को सारी सृष्टि रचने का ज्ञान प्राप्त हो गया चार श्लोकों के अंदर। बाद में वेद व्यास जी ने उसको 18,000 श्लोकों में समझाया, क्योंकि कलयुग में जानते चार श्लोक में समझ आने वाला नहीं है। बोले आठवां अध्याय पहुंच गया है नजफगढ़ में, फिर भी समझ नहीं आ रहा प्रभु जी, चार श्लोक में कहां समझ आएगा? तो इसीलिए वेद व्यास जी ने शास्त्रों की रचना करी हमारे लिए कि समझो कैसे कैसे समझना है भगवान को। ये भगवान कहते हैं कि मैं तीन गुणों की शक्ति से आप सबको बांध के रखता हूं, आपको समझ ही नहीं पड़ता है करना क्या है क्या नहीं करना है। तेजोवारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषः। त्रिसर्ग, तीन गुणों की रस्सी से हम सब बंधे हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। कभी कभी तमोगुण की रस्सी ज्यादा भारी होती है तो हमें लगता है आलस आ रहा है, सेंटर पे जाएं कि नहीं जाएं, प्रभु जी को मैसेज भेजना पड़ता है 140 लोग जुड़े हैं 100 कहां गए हैं। अरे दिव्य ज्ञान प्रकट हो रहा है ना गुरु कृपा से। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम सब तमोगुण की रस्सी से बंधे हैं, वो जब काम करती है तो ये सब काम होते हैं। रजोगुण की रस्सी से आदमी रात दिन भागता है, और सतोगुण की रस्सी से जब बंधा होता है तो वो सेंटर पे आके बैठ जाता है। लेकिन अभी मुक्त नहीं हुआ है, मुक्त कब होगा? सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों रस्सियां खुल जाएं, वो दिन कौन सा दिन आएगा? त्रिगुणातीत भगवान की शरण जब ग्रहण करेंगे गुरु के माध्यम के द्वारा। तो आज हम जानेंगे कैसे गुरु के माध्यम से हम इस ज्ञान को समझ सकते हैं। एक ब्रह्मा जी का जीवन आप बता सकते हैं? अभी हमने आपको बताया कितना लंबा है, यहां पे लिखा है श्लोक में, ढूंढ कर बताइए जल्दी से, कौन बताएंगे? हाँ कितना? हाँ देखो आप उम्र नहीं बता पा रहे, बंदे को जीना है इतना। सोच के देखो 311 trillion 40 billion 311 trillion 40 billion ये आयु है ब्रह्मा जी की, और उसके बाद भी उनको मरना पड़ता है। सोचो आप ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मा बन जाओगे, पुण्य करके क्या मिलने वाला है? भक्ति करके ब्रह्मा को पार करते हुए कहां चले जाएंगे? भगवान के धाम। जब परीक्षित महाराज ने 7 दिन कथा सुनी, 7 दिन कथा सुनकर के वैकुंठ का विमान आया, तक्षक ने उनको जला दिया और उनका दिव्य शरीर बैठ करके विमान पर जा रहा है भगवत धाम, सभी ऊपर के लोगों को पार करता हुआ, और जब ब्रह्म लोक से निकला, जोर जोर से आवाज आ रही, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, सारे ब्रह्मा जी घबरा गए, बोले हमारे लोक में सब तपस्वी होते हैं, शांत चुप रहते हैं, ये शोर कहां से आया। भक्तों ने आगे बताया, अरे एक परीक्षित नाम का राजा हुआ है पृथ्वी के ऊपर, और द्वापर के अंत में प्रकट हुआ था, कलयुग में जाके कथा सुनी है उसने, और कलयुग का प्रवेश हुआ है, और कलयुग में कथा सुनते सुनते कहां चला जाएगा, भगवत धाम। ब्रह्मा जी आपके ऊपर भी कुछ है क्या? तो बोले हाँ। बोले हम तो भंडारे करते रह गए, सोच कर कि भंडारे से कुछ मिलेगा, हम तो यहाँ पहुंच गए ब्रह्म लोक, हम तो पूरी कचौड़ी शनिदेव में बांट रहे थे, हम तो खूब परिक्रमा कर रहे थे, ये क्या हुआ, हम कहां फंस गए कि हम ब्रह्म लोक में अटक गए, कोई आदमी ऊपर जा रहा है, ऊपर क्या है। तो ब्रह्मा जी बोले ऊपर वैकुंठ धाम है, लेकिन कौन जा रहा है नीचे से डायरेक्ट मेरे से बिना पूछे लिफ्ट से, है ना, बिना सातवें फ्लोर पे दसवें फ्लोर पे जा, पूछा कौन है ये, तो पता चला भागवत कथा सुनिए। कहा ठीक है, फिर हम कुछ करते हैं, जरा पता करते हैं, एक तराजू मंगाओ बड़ा सा, तुला मंगा करके चेक किया जाएगा कि क्या ऐसा हो गया। तो सभी उपनिषद रखे गए एक साइड में, सभी पुराण रखे गए एक साइड में, और सभी जितने भी वेद आदि थे सब रखे गए, ब्रह्मा जी को जितना पता था सब रख दिया, और एक साइड पर रखा गया भागवत पुराण। लेकिन भागवत पुराण जमीन से ऊपर टच से मस भी नहीं हुआ, सारे के सारे वेद शास्त्र सब ऊपर लटकते रहे। ये सोच तो बोले कि अच्छा ये है भागवत पुराण। तब ब्रह्मा जी को भी समझ में आया कि ये वही भागवत पुराण है जो श्लोक मैंने सुने थे, चार श्लोक चतुर्श्लोक। तो इतना सरल नहीं है, भजन करके भगवान की कथा सुन के, गीता पढ़ के, और गीता में भगवान क्या कहते हैं, वेदश्च सर्वम् अहम् एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विच्चा अहम्। वेदश्च सर्वम् अहम् एव वेद्यो, वेद पढ़ो कुछ भी पढ़ो ब्रह्मा लोक तक पहुंच जाओगे, लेकिन ब्रह्म लोक से ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा और शास्त्रों का श्रवण करना पड़ेगा, बस दो ही, और कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ काम नहीं करना है कि भंडारे बांटने पड़ेंगे, पूड़ियां बनानी पड़ेंगी, कुछ नहीं करना है, सरल सा है, हरे कृष्णा जपो, सीधा डायरेक्ट एंट्री भगवान के धाम में। शास्त्र पढ़ो, शास्त्र सुनो, और किसके द्वारा सुनो, वैष्णवों के द्वारा सुनो, गुरु के द्वारा सुनो। भगवान कितने विशाल हैं हम समझ ही नहीं सकते हैं। भगवान ने संरचना करी ब्रह्मा जैसे, असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य ब्रह्मा, सोच के देखो हर एक की आयु 311 trillion 40 billion, इतनी लंबी लंबी आयु के। तो ये जो भगवान है ये अचिंत्य है, भगवान का एक नाम क्या है, अचिंत्य, चिंता से परे। श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी जब भगवान अचिंत्य है तो इतने सारे शास्त्र क्यों लिखे आपने, भाई लिखने की जरूरत क्या है कि गीता लिख रहे हो, भागवत लिख रहे हो, चैतन्य चरितामृत, जब भगवान अचिंत्य है, चिंता से परे है, चिंतन से परे, लिखने की क्या जरूरत है। प्रभुपाद बोले मैं पूरे विश्व को यह समझाना चाहता हूं इन शास्त्रों के द्वारा कि हां सच में कृष्ण अचिंत्य हैं, क्योंकि शास्त्र नहीं होंगे ना तो हम भगवान को बड़ा चीप ले लेते हैं, सस्ता ले लेते हैं। कोई भी व्यक्ति सोचता है अरे हम जाते रहते हैं ना वृंदावन परिक्रमा करने, गिरिराज जी की खूब परिक्रमा करी है पिछले 30 साल में हमने, हम जानते कृष्ण को बचपन से जानते हैं, क्या जानते हो, ये जो बोल रहे हैं मैं जानता हूं कृष्ण को, ये तो सबसे बड़ा मूर्खानंद स्वामी है, कृष्ण को जानना बड़ा मुश्किल है, अचिंत्य है भगवान, कृष्ण को नहीं जान सकते, हाँ गुरु को जान सकते हैं, गुरु को जान जाएंगे तो कृष्ण अपने आप आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। लेकिन हम क्या है, गुरु को मनुष्य मानते हैं और भगवान को भगवान मानते हैं, यही गलती करते हैं। गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, साक्षात हरित्वेन, ये हरि के समान ही है, लेकिन वो अपने को दास कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी सोचे अरे आप तो दास हैं, वो भगवान है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, सब भगवान के समान ही है, क्यों, क्योंकि वही है जिन्हें आप पर्सनली जान सकते हो। और कुछ लोग कहते हैं नहीं हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन है कृष्ण से, हमें गुरु गुरु की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान को समझना बड़ा मुश्किल है। जब भगवान रामचंद्र जा रहे थे कहां पर चढ़ाई करने, लंका पे, अपनी सीता मैया को वापस लेने के लिए, तो उनके पास कोई सपोर्टिव टीम तो थी नहीं, तो भगवान ने सोचा कि वानरों की सेना बनाओ, वा नर, ये वानर शब्द का मतलब क्या होता है, वा मतलब वैसा और नर मतलब जैसा, नर मतलब इंसान, तो जो नर जैसा भी हो और नर जैसा ना भी हो उसे कहते हैं वानर। तो हनुमान जी कौन है, बंदर है, कितने लोग बोलते बंदर है हनुमान जी, बंदर नहीं, क्या हाथी है, कौन है? अरे भक्त तो है लेकिन है कौन से रूप में? बंदर कितने लोग बोलते बंदर है? अरे वानर नहीं है? अरे आप लोग तो डर गए, बोलो मैं डरा रहा हूं क्या आपको? बताओ कितने लोग बोलते हनुमान जी बंदर है? ये हनुमान जी के ऐसे बंदर हैं जो बंदर हैं भी अने, यही है वानर। तो ये वानर का मतलब है गुरु श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद है वानर, प्रभुपाद जी के, प्रभुपाद जी कृष्ण के वानर है। वानर मतलब जो वा नर जैसा है भी और नहीं भी है, गुरु वही है, नर जैसा है भी और नहीं भी, यही गुरु है, यही वानर है। तो ये अगर जिस दिन हम समझ जाएंगे कि वानर, तो प्रभुपाद जी को देखो, प्रभुपाद जी का देखो हनुमान जी जैसा लुक भी आता कभी कभी, है ना? प्रभुपाद जी हनुमान जी जैसे भगवान के प्रगाढ़ भक्त हैं, वानर हैं। वानर को बोला भगवान राम ने कि सेना बनाओ, सेना बनाई, बनाई कि नहीं बनाई? हाँ या ना? आप लोग सो रहे हैं, हाँ या ना? कितनी बड़ी सेना थी? बहुत। कितने बहुत? कितने बहुत थे? हाँ? कितनी सेना थी बताइए, बताइए जल्दी बताइए। 1 करोड़। कितने वानर थे? 1 लाख। बताते हैं वहां पर, ध्यान से सुनिएगा, दोनों कान हमें दीजिए। 100 करोड़ महाओघा वानर थे। कितने? 100 करोड़ महाओघा। एक और चीज लगा हुआ करोड़ के पीछे, एक और है, 100 करोड़ महाओघा। अब आपको ये महाओघा क्या नया ले आए प्रभु जी? वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। उन वाल्मीकि रामायण में रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करते हुए वाल्मीकि लिखते हैं कि जो ये महाओघा है इसकी गणना करी गई है, क्योंकि आज समय का गणना की गई है तो हम इसी से ले रहे हैं। 1 लाख करोड़, ये तो समझ में आता है, 1 लाख करोड़ समझ में आता है। 1 लाख करोड़ को संस्कृत भाषा में कहते हैं एक शंखु। क्या कहते हैं? हाँ, एक शंखु। 1 लाख शंखु को कहते हैं एक महाशंखु। क्या कहते हैं? महाशंखु। 1 लाख महाशंखु को कहते हैं एक बृंद। क्या कहते हैं? बृंद, वृंद नहीं, बृंद। 1 लाख बृंद को कहते हैं एक पद्म। 1 लाख पद्म को कहते हैं एक महापद्म। 1 लाख महापद्म को कहते हैं एक खर्व। 1 लाख खर्व को कहते हैं एक महाखर्व। 1 लाख महाखर्व को कहते हैं एक समुद्र। 1 लाख समुद्र को कहते हैं एक ओघा। 1 लाख ओघा को कहते हैं एक महाओघा। और 100 करोड़ महाओघा वानर थे। आप संभाल सकते हो इतनी बड़ी टीम को? सोचो, वो भी बंदरों की, इधर से उधर, उधर से उधर कूद रहे, कैसे समझ में आया? 4 बंदर अगर आ जाएं आपके पास में, संभाल सकते हैं? नहीं, मुश्किल है। कभी कभी जब ज्यादा भक्त हो जाते हैं तो आदमी कहता है प्रभु जी जन्माष्टमी के दिन इतने भक्त है, कंट्रोल से बाहर हो रहा है। कितने आ जाते हैं? 100 करोड़ कितने आते हैं? 1 लाख 2 लाख 5 लाख। उसके लिए सिक्योरिटी, पुलिस, डिवोटी, सेवा, वॉलेंटियर, भर जाओ, फैल जाओ, क्राउड कंट्रोल, धक्का मुक्की, ये हम है, बाउंसर्स भी चाहिए। और वो रामचंद्र भगवान कैसे हैं? एक इशारे पे जहां बोलते हैं वहां सारे वानर 100 करोड़ महाओघा बैठ जाते हैं। ये भगवान है। तो वो भगवान कि आप सृष्टि के अंदर उसकी शरण में ना जाओ और इधर उधर घूमते रहो तो वो ठीक नहीं है। ये जो दादुर दृष्टि है ना, छोटी दृष्टि, मेढक जैसी, कुएं में मेढक गिर गए थे, एक आकर के, क्या होता है बादलों के अंदर से मेढक गिरते हैं, कभी कभी सांप भी गिरते हैं, जो छोटे छोटे टैडपोल होते हैं वो बारिश के दिनों में क्या होता है, भाप बनती है ना तो ऊपर चले जाते बादल, और बादल चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और दूसरी जगह बारिश होती है तो वो जो ऊपर टेडपोल था जब गया था छोटा था, ऊपर भारी हो गया और भारी होके गिरता है। तो गिर के कुएं में गिरा, 4 मेढक पहले से थे, तो 5वें मेढक ने पूछा मैं कहां आ गया हूं? तो 4 कहते हैं वेलकम, आपका स्वागत है हमारे कुएं में। तो 5वां पूछता है ये कुएं में बहुत कम जल है, मैं जहां रहता हूं वहां बहुत जल होता है। कहां से आया था? समुद्र से आया था। कहा कितना जल होता है? 4 मेढकों ने पूछा। बोले इतना जल होता है, इतना जल होता है अथा। तो 4ों में से एक होशियार मेढक बोला क्या कुएं से 2 गुना? समुद्र का जल कितना बोला? कुएं से 2 गुना। तीसरा बोला अरे तुझे क्या पता, कम से कम 10 गुना तो होता ही होगा। ये क्या है, कभी लगा सकता है कुएं के मेढक कि समुद्र में कितना जल होगा? ऐसे क्या हम ब्रह्मा जी के जीवन को समझ सकते हैं? जब ब्रह्मा के जीवन को नहीं समझ सकते तो क्या कृष्ण को समझ सकते हैं? तो इसीलिए सरलता यह है, समझे ना। कई लोग बोलते हैं, प्रभु जी आपने भगवान को देखा है क्या? क्यों जी, देखा है क्या? हाँ नहीं जी, हम जब तक कुछ लोग बोले इस श्लोक लोग की पांडित्यपूर्ण बातें मत करिए, आपने देखा है कि नहीं देखा है? जी हमारे गुरु ने देखा था, हमारे आचार्यों ने देखा था, आपने देखा है क्या? तो ऐसे ही करके एक बच्चा था, साइंस पढ़ रहा था। आजकल थोड़ा सा साइंस पढ़ लेते हैं तो सोचते हैं बड़े ज्ञानी हो गए। हमने भी साइंस पढ़ा है और मैं भी बहुत तर्क वितर्क करता था। साइंस पढ़ करके लगता है हमें बहुत ज्ञान हो गया है, एक नकली कागज की डिग्री हमें ज्ञानी बना देती है। उसने साधु से प्रश्न किया, गुरु जी क्या आपने भगवान को देखा है? कहा देखा तो नहीं, भगवान कोई देखने की वस्तु नहीं है, भगवान अनुभव गम्य है, भगवान का अनुभव किया जाता है। कहा रामचरितमानस जैसे ग्रंथों में तुलसीदास कहते हैं अनुभव गम्य अखंड अनुपा, भगवान कैसे अखंड है, उन्हें कोई खंडित नहीं कर सकता, अनुपम है, भगवान जैसा कोई विशेष नहीं हो सकता, और कैसे अनुभव गम्य है, ये अनुभव करने की चीज है। कहा बस दिखा दी अपनी अनुभव करने की चीज है, मतलब हम पागल हैं आपके आपके शिष्य बने। अरे दिखाओ, प्रूव मी वेयर इज कृष्णा, कहा है? तो उस साधु को क्रोध आ गया, साधु ने उठा करके क्या किया, उसके हाथ पे इससे करके जोर से चीर, अरे आप साधु हैं कैसा व्यवहार करते हैं, मेरे आपने यहां पर चोट लगा दी। कहा क्या हुआ क्या हुआ? अरे मेरे दर्द हो रहा है। कहां दर्द हो रहा है? अरे यहां। कहां दिख तो नहीं रहा। खरे अरे मुझे अनुभव हो रहा है कि दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ बोले जैसे तुझे दर्द का अनुभव हो रहा है ना, मुझे रात दिन कृष्ण का अनुभव हो रहा है। अनुभव गम, भगवान अनुभव की वस्तु है, जब करेंगे तो अनुभव होगा। तो लोग बोलते हैं अरे अनुभव हमें तो हो नहीं रहा, आज प्रारंभ के अनुभव तो नहीं हुआ। बोले आपको नहीं हो रहा है ना, किसी और को तो हुआ होगा। प्रभुपाद जी को तो अनुभव हुआ, हजारों बार प्रभुपाद जी के जीवन में कृष्ण का दर्शन हुआ, और जब तक प्रभुपाद इस धराधाम पे प्रकट लीला कर रहे थे तब तक उन श्रील प्रभुपाद जी को अनुभव हुआ भगवान का, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता। एक बार किसी संत समागम में एक तार्किक ने प्रश्न किया, अजी एक बात बताइए, आप लोग पागल हैं क्या? एक की फोटो लगा ली, बाकी एक आकर बैठ गया उनका प्रतिनिधि, और वो प्रतिनिधि प्रचार करने लगा, और वो प्रतिनिधि प्रचार करते करते कहता है, हरे कृष्णा, तुम्हें कहां पर था? प्रतिनिधि है। तो उसने कहा कि आप प्रतिनिधि, एक बोलता रहता है, एक का फोटो लगा लेते हैं, फिर कहते जय प्रभुपाद, जय इस्कॉन, हरे कृष्णा, आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो साधु को, जो प्रवचनकारी था, उस भक्त को थोड़ा सा अपने स्टेटस का ख्याल आया कि मुझे अपने गुरु का सम्मान करना है, बचाना है अपनी संस्था को। तो उसने कहा कि अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आपने रात में कभी कुत्तों को भोंकते देखा है? कहाँ जी देखा है। कह रहे कैसे भोंकते हैं? कह रहे कुछ नहीं, एक कुत्ता एक चोर को देख लेता है जाते हुए तेज गति से चलते किसी व्यक्ति को, तो वाह, तो ना पीछे वाला कुत्ता होता है उसको देख करके वाह, उसके पीछे वाला वाह 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 वाह, लंबी लाइन लग जाती है। तो आखिरी वाले कुत्ते से पूछो क्यों भोंका, कह रहा आगे वाला भोंका, आगे वाले से पूछो बोले वो आगे वाला भोंका, बोले क्यों तुम ऐसे क्यों भोंक रहे, बोले वो जो सबसे आगे भोंक रहा है वो हमारा प्रतिनिधि है, उस पर हमें इतना विश्वास है कि उसने जरूर चोर को देखा होगा। तो कुत्ते को विश्वास हो सकता है लेकिन भक्तों को विश्वास नहीं कि प्रभुपाद जी ने कृष्ण को देखा होगा है? तो हमारी स्थिति तो बोलते थे ना, प्रभुपाद के शिष्य बोलते थे प्रभुपाद वी आर योर डॉग्स, हम आपके कुत्ते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मुझे कुत्ता बनना मंजूर है, वैष्णव गोसाई मुझे कुत्ता बना दीजिए, वैष्णव के घर का जो खिलाए तो महाप्रसाद खिलाए, मैं दुम हिलाऊं तो वैष्णव को चमर डोलाऊंगा अपना है। ये भावना रखते हैं भक्त, लेकिन हमारी श्रद्धा कम है, क्योंकि हमारी श्रद्धा भगवान में तो है, क्योंकि भगवान के बारे में हमने थोड़ा बहुत सुन रखा है, लेकिन भक्तों में नहीं है। और हमारे को जब तक भक्तों में श्रद्धा नहीं आएगी ना, ये शास्त्र कभी हमारे हृदय में आने वाला नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है भक्त श्रद्धा, वैष्णव श्रद्धा, गुरु श्रद्धा। कहते हैं लाख बार हरि कहो एक बार हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन का वास। वहां विपिन का वास होता है, वहां प्रसन्नता रहती है, श्रीमती राधा रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। एक बार हरि कहो, लाख बार हरि कहो, एक बार हरिदास। एक बार हरिदास का नाम ले लिया है ना, बोल दिया श्रील प्रभुपाद, तो बस काम हो गया आपका। और ऐसा होता है, वो काम जो भगवान का नाम उच्चारण करने पर भी कभी कभी विफल होता नजर आता है, वो गुरु का नाम लेने से, प्रभुपाद का नाम लेने से, अपने गुरुजनों का, अपने वैष्णवों का नाम लेने से बड़ी सरलता से निकलता है कि बस अभी परेशानी आई थी और सरलता से निकल गया। एक बार संसार में ऐसे लोग हैं, कवि चंद्र महाराज है हमारे स्कॉन के, होलीनेस कवि चंद्र गोस्वामी महाराज, वो बताते हैं वो गीता बांटने गए थे और गीता बांटते वक्त एक व्यक्ति को बोले ले लो, समय बहुत कम है, ब्रह्मा जी की आयु इतनी बड़ी है लेकिन उनको भी मरना पड़ता है, तुमको भी मरना पड़ेगा। तो वो आदमी घबरा करके भागा, ये पीछे पीछे गीता ले लो, वो आगे आगे भागा, पुलिस को बुलाया, बोला ये आदमी मेरे को मारना चाहता है, ये आदमी कह रहा है तुम्हारी मृत्यु नजदीक है, उनके ऊपर मर्डर का केस लगा दिया। तो उन्होंने बताया कि मैं मारना नहीं चाहता हूं, मैं तो बता रहा हूं कि सबकी मृत्यु नजदीक है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैं संसार में सैकड़ों सैकड़ों वर्षों तक रहूंगा। तो इस श्लोक में प्रभुपाद कह रहे हैं 311 trillion 40 billion ईयर के बाद भी ब्रह्मा जी को मरना पड़ता, हमको नहीं मरना पड़ेगा। क्या तैयारी है हमारी उस मरने के लिए? आज श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण, हरि नाम जप, वैष्णव अपराध से रहित होकर हरि नाम जप, जप तो कोई भी कर लेता है लेकिन वैष्णव अपराध से रहित होते हुए ये बड़ा मुश्किल है। वैष्णव अपराध से रहित नहीं हुआ जाता, जैसे ही दिखता है किसी वैष्णव में त्रुटि दिखती है तुरंत मन में से लंबी लंबी स्टेटमेंट निकलने लग जाती है, अजी दिखावी है, दिखावटी है, हमारे साथ ऐसा किया था, अजी आप जानते क्या हो, हम बताएंगे इनकी हिस्ट्री। ये सारी जो बातें हैं ना, ये भजन को खा जाती है। जिस पल आपने ये बात करनी प्रारंभ करी उसी पल आपने जब से भजन करना शुरू किया चैंटिंग हरे कृष्णा जीरो, फिर दोबारा से दूसरे दिन जब जप करोगे ना, वो फिर आपका नया आपको मटका भरना पड़ेगा। पहले दिन का सारा आपने ऐसे भरा, टप 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 पूरा भरा, और वैष्णव अपराध करते ही जैसे मटका लिया और नाली में पानी बहा दिया, भर करके सारा गया खाली मटका। वैष्णव अपराध वो जो आपको लगता है ना, कई लोग तो इसमें एक और नई फिलॉसफी ले आते हैं, कहते हैं जी जिसके बारे में बोल रहे हैं ना वो वैष्णव नहीं है। पहले वैष्णव हो तो अपराध लगेगा ना प्रभु जी, जिसको आप वैष्णव मान लोगे उसके प्रति आप अपराध करोगे क्यों? आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप भक्तों को वैष्णव नहीं मानते हो। तो वैष्णव माने, कहते हैं नाम जो होता है ना भगवान का नाम, ये व्यक्ति को ग्राम से लेकर के संसार से लेकर के धाम तक ले जा सकता है, नाम ग्राम धाम। लेकिन आदमी क्या करता है, नाम से धाम नहीं जाने की बजाय नाम से ग्राम के अंदर ही फंस के रहता, ग्राम में कथाओं के अंदर ही। अजी क्या बताएं आपको, इस कौन वालों के बारे में पता है, ये मैसेज पढ़ो जरा व्हाट्सएप में, मतलब गीता जो है वो गलत है, व्हाट्सएप सही है, सोचो जरा कहां हमारी बुद्धि लगी हुई है। अजी मैं आपको दिखाता हूं, ये इस कौन का पैसा ना विदेशों में जा रहा है, ये सारे ये देखो मेरे पास मैसेज आया है। अजी वो किसी और मूर्खानंद स्वामी ने दूसरे को फॉरवर्ड कर दिया तो क्या वो प्रमाणिक बन गया? वेद व्यास जी के पास ज्ञान नहीं था क्या, उन्होंने गीता लिखी, भागवत लिखी? आर्यभट्ट ने मैथमेटिक लिखी, दो और दो चार होते हैं, उसको लेकर डंका पीट रहे हैं, दो और दो चार होते हैं, वो भी तो इंसान थे क्या? वेद व्यास इंसान थे? अगर उन्होंने इंसान भी माने, उनका लिखा हुआ गलत, आर्यभट्ट का लिखा हुआ सही, वाघभट्ट का लिखा हुआ आयुर्वेद सही, लेकिन नहीं वेद व्यास का लिखा हुआ गलत। तो ऐसे प्रकार के जो चर्चा करते हैं उससे कुछ फल नहीं मिलने वाला है। गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा को बढ़ाइए, ऐसा जीवन कर लीजिए जिसमें बस रात दिन भगवान के भक्तों के साथ में जीवन कटे। एक अभिलाषा होनी चाहिए, क्या कृष्ण मिल जाए? नहीं, क्या होनी चाहिए? भक्त मिल जाए। भागवत वर्णन करती है, भागवत के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 25वें श्लोक में, सताम प्रसंगा मम वीर संविदो भवन्ति हत्कर्ण रसायनम कथा। कैसे होना चाहिए? सताम प्रसंगात, भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति, मम वीर संविदो, और उनके साथ क्या हो, कृष्ण कथा चर्चा, भगवान के बारे में सुनो, पूछो, सुनो। इतनी सारी कथाएं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जितनी बार जिस भक्त से मिलोगे ना, कुछ नया सुनने को मिलेगा। मेरा अनुभव है, एक ही श्लोक को मैंने कई भक्तों से पूछा और हर एक ने अपने अपने अंडरस्टैंडिंग बताया। मजा आता है भक्तों से पूछने में, प्रभु जी आपका ये जो आठवां अध्याय का 17वां श्लोक, इसके बारे में क्या विचार है, ये एक भक्त का प्रश्न है। वरना दूसरा क्या कहेगा, अरे लिखा हुआ है ना प्रभुपाद जी का, पढ़ लेंगे। यार एक बात बताओ, ये जो मंदिर में ना ये 6000 रुपए ले रहे हैं, ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये जो सचिपति प्रभु जो दे रहे हैं ये हमको ना, किताबें जो दे रहे हैं, ये हमारे को ऐसा तो नहीं लूट रहे हैं कहीं? ये बातों में हमारा ज्यादा चित लगता है, और जब तक ये लगेगा हमारी भक्ति खत्म है। मतलब जो तिलक है यहां से यहां तक लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भक्ति प्रगाढ़ होने का मतलब है वैष्णवों के अंदर प्रेम की बुद्धि उत्पन्न हो गई। हर वैष्णव को देख के मन करता है, आजा भाई आजा, आ पाले झप्पी गले लग जाए, बस ये मन होने लग जाए। किसी को देख के भी द्वेष ही ना आए, है ऐसी स्थिति, हर एक को देख के गले लगाने का मन करे। सेंटर पे जरूरी नहीं जो प्रवचन देने आया बस वही अच्छा है, जितने सुन रहे हैं वो भी अच्छे हैं। ऐसी भावना जिस दिन आ जाएगी, आप देखो आपको आनंद होने लग जाए। आपको जब द्वेष ही नहीं है, टेंशन ही खत्म दिमाग से। एक तीर तो लगता है यहां पर, है ना, जब कोई बुरा बोल देता है या बुरा बर्ताव करता है, और दूसरा तीर लगता है जो यहां से चलता है, वो वाला भारी तीर होता है, छोटा छेद उस पर एक बड़ा तीर। यहां पे लगा किसी ने बुरा बर्ताव किया, और फिर ये वाला यहाँ गोल 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 गोल, अपने आप को ज्यादा समझता है, मेरे साथ ऐसे बोल गया, सीनियर बनता है अपने आप को, मैं बताऊंगा तेरे को, अपने आप को सोचता रहता है। ये जो दूसरा तीर चल रहा है ना, ये ज्यादा गहरा घाव करता है। मतलब एक बुलेट ने छेद किया, दूसरी घोंग 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 घोंग, ये अंदर तकलीफ देती है। तो हमें किसको रोकना है, उस बुरे व्यवहार को, ये जो गोल गोल घूम रहा है ना, इसको बुरा व्यवहार कर दिया ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये जो गोल गोल घूम रहा है गौं, 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 ये आदमी का गहरा करता है। ऐसा हो जाता है उस आदमी का चेहरा देख करके ना, हरे कृष्णा जप रहे हो, हरे कृष्णा सामने दिख जा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम, अरे प्रभु क्या हो गया आपको ऐसा? अब वो उसका चेहरा देख गया, मंदिर में क्यों आता है? अरे भगवान के मंदिर में कौन नहीं आएगा, बोले चोर है। उस चोर भी तो भगवान के मंदिर में आ सकता है, पापी भी तो, और कौन तारेगा भगवान के अलावा पापियों को, चोरों को कौन तारेगा? हमारे गुरु महाराज जोलिनस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से लोग पूछते हैं कि किसी भक्त ने कुछ अपराध किया, महाराज आप उसे हटा क्यों नहीं देते? महाराज ने कहा अगर हम भी हटा देंगे तो उसको बचाएगा कौन? तो ये हमें समझने वाली बात है, परा दुखे दुखी, दूसरे के दुख से दुखी हो, समय बहुत कम है, द्वेष के अंदर जीवन को व्यतीत ना करें। ब्रह्मा जी का जीवन बहुत बड़ा है, उसमें भी लोमेश ऋषि कह रहे हैं समय कम है, और हम सोच रहे हैं अभी समय बहुत पड़ा है, आज बुराई कर लेंगे जब कल करेंगे। ध्यान पूर्वक जब बहुत जरूरी है। सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो, हमेशा भगवान के भक्तों की कथाओं का श्रवण करते रहे, उनसे चर्चा करते रहे, और कैसे करें? तत जो षडाता शुप वर्ग वर्तमनी श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रम शांति। इसमें बड़ा अच्छा वर्णन किया है, कहते हैं अनुक्रम शांति, मतलब लाइन पे सबसे पहले मिलेगी श्रद्धा, भक्तों के प्रति श्रद्धा, दूसरी मिलेगी रति, उस भक्त के प्रति प्रेम, और फिर मिलेगी भक्त से भक्ति। भक्ति महारानी से पूछा गया, विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर ने भी लिखा जैव धर्म नामक पुस्तिका में, भक्ति महारानी से पूछा है, भक्ति महारानी आप कहां रहती हैं? भगवान के चरणों में। भक्ति कहती है नहीं, कहां रहती हूं? भक्तों के हृदय में। कि कैसे मिलेंगी? बोले जब एक भक्त बैठा है और दूसरा भक्त आया है, और दूसरे भक्त ने इस भक्त को कुछ ऐसा किया कि ये प्रसन्न हो गया, कुछ ना आशीर्वाद मांगा कि 1 किलो मिट्टी दे दो अपने चरणों की, मुझे अपने घर में ले जानी है, ना फोटो मांगा, ना उसका वस्त्र मांगा, ना उसके कुछ शिक्षा मांगा, कुछ नहीं, कुछ ऐसा किया कि ये वैष्णव भक्त प्रसन्न हो गया, चाहे उसको मर्जी का फ्रूट दे दिया, पानी पिला दिया, उसकी जो इच्छा है वो कर दिया और वो खुश हो गया। क्या जैसे ही भक्त प्रसन्न होता है, मैं स्वतः ही, जैसे होता है ना झूला बच्चों का, ऊपर बैठाओ और जूम करके स्लैंडिंग से नीचे आ जाता है, नीचे वाले भक्त के पास मैं खिसक के वैसे उसके हृदय में प्रवेश कर जाती हूँ। सिंपल सा, भक्ति कैसे प्राप्त करे और भक्त को प्रसन्न करके। और हम भक्ति कैसे प्राप्त करना चाह रहे हैं? ध्यान पूर्वक जप, इससे भक्ति नहीं प्राप्त होती है। भक्ति प्राप्त हो, ये तो साधना है जिसके द्वारा भक्तों को प्रसन्न किया जाता है। प्रभुपाद ने कहा जप करो, प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए हम जप कर रहे हैं। लोग कह रहे नहीं, हम तो जप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पाप मुक्त होना चाहते हैं। कोई फायदा नहीं है, वो जप फल तो देगा लेकिन वो धीरे 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 धीरे, एक्सप्रेस ट्रेन नहीं, धीरे धीरे धीरे। एक्सप्रेस ट्रेन है भक्त प्रसन्न, हरि नाम जप, बस सीधा लिफ्ट, नीचे जीरो पे बटन दबाओ, 10th फ्लोर सीधा गोलोक धाम, बीच में कोई और फ्लैट नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसे जाना चाहते हैं, उसके लिए विश्वास होना चाहिए गुरु और वैष्णवों के ऊपर। जैसे प्रभुपाद एक बार हिजोलियंस तमाल कृष्ण गोसाई महाराज के साथ और श्रुति कीर्ति प्रभु के साथ अमेरिका की सड़कों पर घूम रहे थे, जहां बहुत ठंडा इलाका है। अभी रशिया के अंदर बहुत ठंड पड़ रही है। युकुत्सुक नाम का एक देश है जहां पर नॉर्मल टेम्परेचर है -65 डिग्री टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर है वहां पर। और जब गर्मियां आ जाती हैं यहां पर, पसीना बहता है, तब वहां पर गिरता है तापमान और -45 डिग्री रहता है। वहां भी जीवन है, रहते हैं लोग। तो ऐसे एक इलाके में प्रभुपाद गुजर रहे थे और ज़िगज़ैग ऐसे करके नदी थी जो कि बर्फ बन गई थी। अब युकुत्सु में झरने जो है वो सारे झरने थोड़ी हैं, वो पानी निकला और बर्फ, जैसी टप बर्फ, ऐसे ऐसे ही वहां पे था, नदी थी ऐसे, और नदी के ऊपर जमी हुई बर्फ थी। तो लोग चल पाते हैं, जब बर्फ जम जाती है उसके ऊपर चल सकते हो आप। और युकुत्सुक देश में रशिया में ट्रक चलते हैं, बर्फ नदी के ऊपर ट्रक चलते हैं, सोचिए आप कैसा देश है। ऐसे प्रभुपाद चल रहे थे, हाथ में लाठी थी, वॉक करते जा रहे थे, ज़िगज़ैग रोड थी। तो प्रभुपाद जब चलते थे, इधर तमाल कृष्ण महाराज थे, इधर श्रुति कीर्ति प्रभु थे, प्रभुपाद करके ना छेद कर देते थे, फिर थोड़ा आगे जाते थे ऐसे छेद कर देते थे। भक्त समझ नहीं पा रहे प्रभुपाद ये बच्चों की तरह क्या कर रहे, बर्फ तोड़ रहे बीच बीच में से बर्फ तोड़। तो फिर श्रुति कीर्ति प्रभु ने पूछा, शिला प्रभुपाद आपकी हर लीला में कुछ शिक्षा होती है, ये आपने अपनी छड़ी से जो जगह जगह पर बर्फ में छेद किया, इसमें क्या शिक्षा है? प्रभुपाद ने कहा इसमें यह शिक्षा है कि हमारा हृदय इस जल की तरह निर्मल है, लेकिन अपराधों के कारण, इस संसार की आसक्तियों के कारण हमारे ऊपर माया रूपी इस आवरण, ये जो बर्फ जम गई है, हमें क्या करना है, हरि नाम के सारे कुछ छेद करना है, और फिर जब ये बर्फ टूट जाएगी तो क्या होगा, वापिस हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा। तो ये करना है, भक्ति का मार्ग क्या है, प्रभुपाद ने कहा बर्फ तोड़, माया की बर्फ तोड़ दो और निर्मल हृदय बाहर आएगा। लेकिन कब आएगा? श्रद्धा, श्रद्धा जब होगी। ईशो उपनिषद के 15वें मंत्र में भक्त कहते हैं, हे प्रभु हिरण्यमयेन पात्रेण सत्य शापहितं मुखं तत्त्वं पुष्णा पाठना सत्य धर्माय दृष्टये। हिरण्यमय पात्रेण, हे प्रभु आपके शरीर से निकलने वाला जो ये तेज है इसको क्या करिए, हटा लीजिए, अपने विग्रह का दर्शन कराइए। ईशो उपनिषद मंत्र 15 में भक्त वर्णन करते हैं कि आप क्या करिए, इसको हटा लीजिए, तब हम क्या कर पाएंगे, सत्य शापहितं मुखम, आपका यह सुंदर मुख है इसका दर्शन कर पाएंगे। तत्त्वम पूषणम, और फिर क्या है, आप जो है ना हमारी ये पलकें भी हटा लीजिए, हम क्या चाहते हैं पालक, हम देखना चाहते हैं आपके उस मुख को, सुंदर चेहरे को। सत्यम धर्म दृष्टाए, तब हमें क्या होगा, आपका ये सत्य धर्म है, आपका ये मुख है कृष्ण आकर्षक, ये दर्शन होगा। लेकिन उसके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु ये माया हटा लो। तो जब हम लोग ऐसे हाथ ऊपर करते हैं क्यों करते हैं, शरणागति क्यों करते हैं? तो सुना सुना बोल दिया आपने शरणागति, तोता भी बोल देता हरे कृष्ण क्या है। दोनों हाथ कब करते हैं, जब बैंक में डकैती पड़ती है और जब आदमी चोरी करके भाग रहा होता है माया को, तो पुलिस आ जाती है और पुलिस जब पिस्तौल निकालती है तो चोर क्या कहता है, क्या कहता है, सरेंडर। और पुलिस वाला क्या कहता है, तो भगवान क्या कह रहे हैं आपको, करिए हैंड्स अप, और हैंड्स अप करके क्या करना है, शरणागति, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। ये है शरणागति, इसलिए दोनों भक्त हाथ ऊपर करते हैं। लेकिन जब तक गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं, वैष्णव के प्रति श्रद्धा नहीं, ये ब्रह्मा जी का जो ये काल है हमारे समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक बार आपने श्रद्धा कर ली, फिर देखो तेने हृदय ब्रह्मा आदि कव्य, हृदय में ज्ञान प्रकट होगा, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, गुरु की कृपा से दिव्य ज्ञान। अध्ययन करने से कि मैं भी खरीद लाता हूं पुराण, मैं भी उपनिषद ले आता हूं, अच्छा ये बड़ा लेक्चर देते मैं भी दूंगा, प्रभु आप सेंटर में नहीं आते, प्रभु आप जप नहीं करते, कभी कभी दिखाई भी नहीं देते, भक्तों के साथ मिलते जुलते नहीं, यार मेरे पास टाइम नहीं, मैं पुराण पढ़ रहा हूं, बहुत थोड़े दिन बाद क्या पढ़ा था याद नहीं आ रहा, क्या पढ़ा था याद नहीं आ रहा, मौके पे क्यों चौका हो जाता है मेरा, भूल क्यों जाता हूं मैं, वो तभी है क्योंकि अभी कृपा नहीं है। और गुरु की कृपा होगी तो जपते 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 ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ऐसी एक कथा आती है, एक बार एक भक्त थे जिनका नाम था रामदास, रामदास जी जो थे ना उनके पास में बहुत सारे शिष्य थे, बहुत सारे शिष्य, और सभी शिष्य बड़े ही ज्ञानी, सभी श्लोकों का उच्चारण करने वाले, और उनके उस रामदास जी जो थे ये उस समय में हुए हैं जिस समय तुकाराम जी थे, मराठी संत थे रामदास जी, और बहुत सारे हमारे आचार्यगण उनकी लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो रामदास जी जो थे उनके कई सारे शिष्य थे, और सभी के सभी शिष्य श्लोक उच्चारण करा लो उनसे और आपकी गलतियां निकाल देंगे, इतना उनको ब्राह्मण तो व्याकरण का ज्ञान। और एक बेचारा भक्त था, वो कैसा था, वो ऐसा था कि उसको कुछ आता जाता नहीं था, बेचारा अज्ञानी, कभी क्लास में बैठा नहीं। गुरु ने एक सेवा दी कि मटके से पानी लाकर के भक्तों के लिए भरो, जो ये कथा सुनने आते हैं ना बाद में ये प्रसाद पाके पानी पियेंगे, तुम्हारी सेवा है पानी भरो, पढ़े लिखे नहीं हो व्याकरण समझ नहीं आएगा, तुम सेवा करो। गुरु जी की सेवा करते 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 कई दिन बीत गए। अब जो हुआ रामदास जी का प्रेम जो था वो अपने इस भक्त के प्रति बढ़ने लगा, जो ज्ञानी शिष्य थे उनके मन में क्या आ गया, द्वेष, ईर्ष्या, ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा गुरु जी आप, हम ये मानते हैं कि आप समझदार हैं और आप बहुत ही बड़े तत्व ज्ञानी हैं, तत्वदर्शी हैं, परंतु प्रश्न है आप ये जो है ना मटका भरने वाला जो भक्त है इसके प्रति आपको इतना प्रेम क्यों है। कहा क्योंकि उसकी श्रद्धा है ना, वो मैं देखता हूं कितने भाव से पानी भरता है कि भक्त पिएंगे, इसमें एक चीटी ना गिर जाए, इसमें एक तिनका ना गिर जाए, उसकी जो ये श्रद्धा है भक्तों की सेवा करने की जो भावना है मुझे उसके प्रति और आकर्षण कराती है। कहा हमारे गुरु जी तो ना हो गया बेड़ा गर्क, गुरु जी का फॉल्ट डाउन हो गया, इनको पानी भरने वाले अच्छे लग रहे, हमारे देखो हमने झंडे गाड़ रखे प्रवचन दे देख के, हमारे हम अच्छे नहीं लग रहे इनको है? तो है ना, गुरु जी ने जब इस प्रकार से कहा तो सभी भक्तों के मन में संशय आ गया। आप गुरु कैसे होते हैं, सबके मन की बात जान लेते हैं। गुरु जी हंसने लगे और एक दिन कहा इनको कल सुबह बताऊंगा। दूसरे दिन प्रवचन करते वक्त गुरु जी ने 17 श्लोकों का उच्चारण किया और कहा आप में से कोई इन 17 श्लोकों के तात्पर्यों को बता सकता है। कहा गुरु जी एक एक करके अगर आप बोले तो फिर भी बोल सकते हैं, लेकिन ये 17 थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है गुरु जी। तो गुरु जी बोले अच्छा कोई भी नहीं है आप में से व्याकरण का विद्वान? हाँ नहीं गुरु जी हम में से कोई। तो फिर बुलाया उस भक्त को मटका जो पानी भरता था, बोले आप इधर आइए। बोले मैंने अभी ये 17 श्लोक बोलूंगा, आप क्या इन पे तात्पर्य दे सकते हैं? बोला अरे गुरु जी आप कैसी बातें कर रहे, मैं पानी भरने वाला, कभी क्लास नहीं, कभी कोई भक्ति शास्त्र नहीं, कभी कोई भक्ति वैभव नहीं, मेरे जीवन में भक्ति प्रकट कहां से आएगा? तो बोले अरे भक्ति डिग्री का विषय नहीं है, भक्ति जिगरे का विषय है, हृदय का विषय है, तुम कहां डिग्री में फंस गए हो, सुनो श्लोकों को। 17 श्लोक फिर से पुनः उच्चारण किए, उससे पूछा आप बताओ। तो उसने हाथ जोड़े आंख बंद की, बोला गुरु जी मैं बड़ा अयोग्य हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि आपका आदेश था पानी भरना, मैंने पानी भरा, आज आपका आदेश है कि मैं श्लोकों पर उच्चारण करूं, तात्पर्य बोलूं, तो मेरी जो छोटी सी बुद्धि में आता है मैं उसके द्वारा बोलूंगा, त्रुटि हो तो आप मुझे क्षमा करें। गुरु जी बोले बोलो। तो उसने जो बोला तो ऐसा बोला सारे व्याकरण वाले सोचने लगे, यार हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं, क्यों हुआ ऐसा? गुरु के प्रति शरणागति, वैष्णवों के अपराध नहीं था, पानी भरता था उनके लिए। लेकिन यहां पर किसी को बुला के माला दी जाए और गलती से किसी का डेट ऑफ बर्थ भूल जाए, बर्थडे का, अगली बार नहीं आऊंगा, सेंटर में ना पार्शियलिटी होती है, उसको माला और हमको निकाला, ठीक है भाई। तो है ना ये जो है ना भावना जब तक रहेगी, सॉरी टू से, माफ करिएगा, पर भक्ति अभी बहुत दूर है, ये भक्ति दूर का विषय है। लेकिन जिस दिन ये भावना बदल गई, जिस दिन आपको ये ना लगे कि सच्ची पति प्रभु में कोई दोष है, नित्यानंद राम प्रभु में कोई दोष है, जय माधव प्रभु में दोष है, जब तक ऐसा ना हो ये दोष दृष्टि बंद हो जाए, वाह वाह वाह, फिर देखो आपको ऐसा लगेगा आपके घर में वृंदावन बन गया है, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। फिर भी भक्तों को विश्वास नहीं हुआ, वो भक्त बोले अरे ना गुरु जी की बिना कहां पता नहीं कैसी बुद्धि हो गई है, ये पानी वानी वाले को ऐसे करते हैं। गुरु जी बोले अभी भी इनको संतुष्टि नहीं हुई, व्याकरण सुन के भी संतुष्टि नहीं, ये सोच रहे हैं मैंने इसको रातों रात याद करवाया है और सुबह पुनः उससे बोला उच्चारण करो। अच्छा कोई बात नहीं, कल और एक नेक्स्ट टेस्ट देता हूं। गुरु जी ने नया टेस्ट रखा, रामदास जी कहते हैं मैंने क्या किया, अपने पैर में एक बताया एक नाट्य रूपांतरण किया, बोले मेरे पैर में फोड़ा निकल आया है यहां पर जंघा पे, तो आप में से कोई ऐसा है जो इस फोड़े का इलाज कर सके, कोई वैद्य आदि उपचार के द्वारा औषधि के द्वारा। सारे बोले कि नहीं गुरुजी हम तो व्याकरण संस्कृत जानते हैं शास्त्र जानते हैं, हमें ये औषधि विज्ञान नहीं आता है। तो बोले कि रामदास जी कहते हैं मैंने रात में भगवान को स्वप्न में आते देखा और भगवान से पूछा कि हे प्रभु क्या मैं अपनी इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ा पाऊंगा, तो भगवान ने कहा हाँ बढ़ा सकते हो, अगर तुम्हारा कोई शिष्य तुम्हारे इस फोड़े के मवाद को पी ले तो वो मर जाएगा और तुम जीवित रहोगे। तो आप में से कोई है जो इस फोड़े के मवाद को पी जाए, आएगा कोई? तो सबसे बोला आप बताइए परमानंद स्वामी। तो परमानंद स्वामी कहते हैं मैं कैसे पीऊंगा, आप तो जानते हैं मैं ज्ञान में विशेष हूं, अगर अगर मैं ही समाप्त हो गया तो ये प्रचार कार्य आगे कैसे बढ़ेगा महाराज। महाराज ने कहा कि मैं जीवित रहूंगा थोड़ा बहुत मैं बढ़ा लूंगा। कहा आप तो बूढ़े हो गए, मैं तो युवा हूं, मेरा तो अभी जीवन बाकी है। इस सारे प्रश्न उत्तर के सब श्रेष्ठ श्रेष्ठ भक्तों को बुलाया, किसी ने भी उस मवाद को पीने के लिए एक्सेप्टेंस नहीं। तो बाद में उसको बुलाया गया, बोले आप इधर आइए, बोले आप पिएंगे? तो बोला हाँ हाँ गुरुदेव मैं पीने को तैयार हूं। तो बोले लेकिन मवाद पीने से तो मर जाओगे। कहा गुरुजी देखिए वैसे भी मैं अज्ञानी ठहरा, कभी कभार थोड़ा बहुत बोल दिया आपकी कृपा से, वरना मुझे कुछ आता थोड़ी है। अगर मवाद पी के मैं मर गया और आप जीवित रहे, तो अगर आप एक वर्ष भी और जीवित रहे तो कितने लोगों का कल्याण होगा, लोक कल्याण होगा, और मैं अगर आप चले गए और मैं जीवित रहा तो मैं किसका कल्याण करूंगा, क्योंकि मेरी बात तो कोई मानेगा नहीं, इसलिए आपका जीवित रहना ज्यादा जरूरी है। तो गुरुजी ने कहा ये कह रहे हो या सच में कर सकते हो? कहा गुरुजी कर सकता हूं। तो गुरुजी ने पैर आगे कर दिया और उसने धीरे धीरे चूसना शुरू किया, आधा फोड़े का मवाद निकल गया। तो शिष्य से बोलते हैं तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? कह रहे हैं गुरुजी तकलीफ तो नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों मजा आ रहा है। कहा मजा आ रहा है, क्यों मजा आ रहा है? कह रहे हैं मैंने सुना था मवाद नमकीन और खट्टा कावा होता है, लेकिन इसमें तो मिठास आ रही है। गुरुजी आपका तो फोड़ा भी दिव्य है। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं फोड़ा दिव्य नहीं है, ये दिव्य इसलिए मीठा लग रहा है क्योंकि ये फोड़ा ही नहीं है, ये तो आम है। मैंने तो अपने धोती के नीचे क्या छिपाया था? सारे शिष्यों के मुंह नीचे हो गए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम एक वैष्णव के लिए ऐसा कर पाएंगे? हमें तो अपनी पड़ी है, मेरा नाम मेरी प्रतिष्ठा मेरा ज्ञान सबके सामने उजागर होना चाहिए, मैं कितना ज्ञानी हूं। ये जब तक भावना है कोई ज्ञान अगर उजागर भी हो गया परिवर्तन नहीं कर पाएगा। परिवर्तन तभी हो सकता है जब अंदर से इच्छाएं समाप्त हो गई हैं कि मैं ज्ञानी हूं। महाप्रभु कहते हैं गुरु मेरा मूर्ख देखी, गुरु ने मुझे मूर्ख समझ के हरि नाम दिया है। तो हमारे अंदर ये मूर्ख भावना है नहीं, हम तो ज्ञानी है, हम तो समझदार है, हम तो ऊपर से सिखाने वालों को बोलते हैं इनको मालूम ही नहीं है हमारे साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये क्या सिखाएंगे हमको वैष्णव सदाचार। तो इसीलिए हमारी भक्ति जो है वो थोड़ी बहुत बची हुई है, क्योंकि आपके मन की बुद्धि खराब है, लेकिन जिसके प्रति आपकी बुद्धि खराब है उस वैष्णव में ऐसी भावना नहीं है, इसलिए आप बचे हुए हैं, वरना आप कहीं पड़े होते किसी किनारे में, कई प्रकार की बीमारियों से आप पीड़ित होते। वैष्णव अपराध करने से कई भक्तों को क्या निकल आते हैं, कोढ़ हो जाता है, फोड़े निकल आते हैं। चैतन्य चरितामृत भरा पड़ा है, गोपाल चप्पल के शरीर पर फोड़े निकल आए थे, कोढ़ हो गया था उसको रातों रात भक्त के प्रति अपराध करने से। तो हम भक्त अपराध बुद्धि को, गुरु को साधारण मनुष्य रोज बोलते हैं, तीसरा अपराध गुरु को साधारण मनुष्य नहीं समझना, और गुरु जी का प्रवचन हो तो साधारण मनुष्य बोले हम तो आ नहीं पाए हमें मैसेज नहीं मिला, अरे गुरु जी का प्रवचन मिस कर दिया कितनी बड़ी, हम तो फिर ज्ञानी समझ रहे ना। तो समझने वाली बात है कि गुरु को भगवान का साक्षात विग्रह मानते हुए, वैष्णवों को भगवान का प्रतिनिधि मानते हुए जब हम चलेंगे, तब ये फिर इतना सारा जीवन हमको परेशान नहीं करेगा ब्रह्मा जी का। जैसे आदमी अभी ये बोलेंगे ना, तो व्यक्ति बोलेगा ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब नकली लिखा हुआ है। इतना लंबा को जीता है 311 trillion 40 billion, आपके सामने पतंगे का जीवन होता है कि नहीं होता है? रात ही रात में पतंगा पैदा होता है, बारिश के दिनों में मोमबत्ती के आसपास घूमता है, और उसके बाद वो कुछ कितनी देर में मर जाता है। सुबह जब उठते हैं तो पूरी रात 12 घंटे में सुबह मरा हुआ मिलता है। 12 घंटे के अंदर अंदर वो पैदा होता है, बड़ा होता है, शादी करने की इच्छा उत्पन्न करता है, और एक पतंगा दूसरी पतंगी के साथ में संसर्ग करता है, बच्चे पैदा करता है, 15-20-50-60 घर पहर बनाता है छोटे छोटे, और फिर उसके बाद में कहता है तू क्षमा में परवाना है ना, जल के तो दिखाना, तो वो जल जाता है, अंदर जला जाता है, बत्ती में जल जाता है, जल के मर जाता है। लेकिन कितना कुछ कर गया। अब उस पतंगे को बोलो, दूसरे पतंगी इस्कॉन चली जाए, गीता पढ़ने लगे और बोले पता है मनुष्यों का जीवन, हमारे 12 घंटे तो उनकी रात्रि है, और उनके 12 घंटे हमारा हमारा दूसरा जीवन, और ऐसा उनका एक दिन, और ऐसे 365 दिन का एक साल, और ऐसे 100 साल तक वो जीते हैं। अरे है ये सब फालतू बातें, ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं? तो इसीलिए हमें ब्रह्मा का जीवन नकली लग रहा है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से, पतंगा अपनी बुद्धि से सोच रहा है, तो अपनी बुद्धि से कृष्ण समझ में आने वाले नहीं है। कैसे समझ में आएंगे? गुरु की बुद्धि से, वैष्णव की बुद्धि से। आपको सिर्फ क्या करना है, मूर्ख मान के शरणागत कर दो, ये सारा ज्ञान हृदय में ही से प्रवेश कर जाएगा। इसके ऊपर का भी पता चल जाएगा, सबसे ऊपर गोलोक धाम, उसके नीचे द्वार मथुरा, द्वारका, मायापुर, जगन्नाथपुरी, सब दर्शन हो जाएगा आपको, साकेत धाम सब नजर आएगा। लेकिन वो आता क्यों नहीं है? हमें तो यहाँ से बदरपुर बॉर्डर नजर नहीं आ रहा। बोले बहुत दूर है फरीदाबाद, प्रभु जी आपका बदरपुर बॉर्डर बहुत दूर है। दूर क्यों लग रहा है? ब्रॉड विजन नहीं है ना। तो आदमी कहते हैं ना ऊंचा बनो, जितना ऊंचा बनोगे ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं छोटी लगने लग जाएंगी, और आप बड़े होते चले जाओगे, बड़े होते चले जाओगे। फ्लाई हाई, प्रभुपाद बोलते हैं ऊंचा सोचो। ऊंचा सोचने का मतलब, जब ऊंचा सोचोगे तो छोटी छोटी चीजें बहुत छोटी होती चली जाएंगी, है कि नहीं? जब आप हवाई जहाज में बैठते हो तो क्या होता है, वो बड़े बड़े मकान जो से आप ऐसे करके देखते हो, आप जब ऊपर उठते हो तो क्या होता है, वो मकान छोटे जाते हैं। जब ज्ञान में आप ऊपर उठोगे ना, तो ये जीवन की छोटी मोटी झिकझिक है ना, वो बहुत छोटी निकलेंगे। उसने ऐसे बोला कोई बात नहीं, उसने ऐसे कर देखा ना कोई बात नहीं, ज्ञान ऐसे बड़ा हो गया ऊपर। तो अपने को वैकुंठ एयरलाइन में बिठा करके अपने ज्ञान को बड़ा कर लो। वो कैसे होगा? गुरु के प्रति शरणागति। कहते हैं ए बुद्धि सही सदा गुरु भक्ति करे, सही गुरु भक्ति भले संसारत तरे। ए बुद्धि सही सदा, जिसकी ऐसी बुद्धि होगी गुरु भक्ति करे, जो गुरु की भक्ति करेगा, सही गुरु भक्ति, वही गुरु भक्ति क्या करेगी, भले संसारत तरे, संसार से तर जाएगा व्यक्ति। तरना चाहते हैं कि नहीं है? तो वैष्णवों के प्रति शरणागति लाएंगे कि नहीं लाएंगे? वैष्णव ने मैसेज भेजा कितने बजे आना चाहिए, तो आपको कितने बजे आना चाहिए? 8:30 तो चलता है प्रभु जी, प्रसाद का टाइम तो 9 है ना, कितने बजे आना चाहिए? हाँ देख लो, जब तक ये श्रद्धा की पहली सीढ़ी है, अनुक्रम शांति, अनुक्रम में प्राप्त होगी श्रद्धा, उसके बाद में भगवान से रति, उसके बाद की बात है भक्ति। अभी थोड़ी भक्ति है कि तिलक लगाया और दो माला करता हूं, बोले जी भक्त हो गया, अभी तो मनुष्य हो गया। प्रभुपाद जी कहते हैं 16 राउंड्स मिनिमम, कम से कम 16 माला जप करो। ये प्रभुपाद ने बोला था विदेशियों को, जिनका मन शराब में, मदिरा में, मांस में, सब में लिप्त था, हिंदुस्तानी को लेने का। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं चेतन महाप्रभु की वाणी है, जो 64 माला नहीं करता मैं उसके हाथ से भोजन स्वीकार नहीं करता हूं। प्रभुपाद ने कहा कि भगवान को भोग लगाओगे और 64 माला तो करोगे नहीं, तो भगवान तो भोग खाएंगे नहीं, और जब भगवान भोग नहीं खाएंगे तो हम प्रसाद नहीं पाएंगे, तो फिर हम तो पाप ही खा रहे हैं। तो इसलिए महाप्रभु की कृपा को प्रभुपाद जी ने सरलता से उन जो उस पाश्चात्य देश के लोग थे उन्हें कहा ठीक है 32 माला जप करो। कहा 32 भी करना मुश्किल है, कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है कम से कम 16 माला, कम से कम। इसका मतलब है कि जाना कहां तक है, जितनी कर सको उतनी करो। एक बार हमने अपने गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से प्रश्न पूछा, महाराज मेरा मन है मैं कार्तिक में माला बढ़ाना चाहता हूं, लिखा है गुरु से पूछ के माला बढ़ानी चाहिए, तो आप मुझे इजाजत देते हैं? महाराज ने कहा अच्छे कामों के लिए पूछना नहीं चाहिए। तो अच्छे कामों के लिए पूछना नहीं चाहिए, जितनी अधिक गीता पढ़ें, जितना अधिक हम जप करें, जितना अधिक गुरु वैष्णव पे श्रद्धावान हो, उतनी जल्दी ये ब्रह्मा जी का जीवन हमारे को समझ में आएगा। वरना ये ऐसा लगेगा कि झूठ लिखा हुआ है, शास्त्र के प्रति अपराध हो जाएगा। लिखते हैं ना वैदिक शास्त्रों के प्रति क्या लिखते हैं अपराध में, नाम अपराध में क्या आता है, वैदिक शास्त्रों का खंडन करना। अगर कोई बोले ऐसा थोड़ी होता है, कितना लंबा लंबी फेंक रखी है, 311 trillion 40 billion क्या है हमारे शास्त्र भी ना, मतलब कहां कहां से ऐसे, जो ऐसे बोलेगा वो इतनी नाम अपराधी हो गया। अब ये गुरु को साधारण मनुष्य मानेगा, फिर दूसरा हो गया, फिर वैष्णव भक्तों जो प्रचार में जीवन समर्पित है उनके प्रति अपराध हो गया, फिर खत्म, फिर हरे कृष्णा घिसते रहो और फिर उससे कुछ होना थोड़ी है, लकड़ी घिसते घिसते जीवन चला जाएगा। बोले नहीं माला करते थे, माला तो करते थे हाथ में तो माला, फिर मन में सुमरन क्या है, मन में क्या चलता है वो तो मालूम नहीं। भगवान ने ये नहीं कहा अंत काले चा मामेवा बुलवा मुक्तवा कलेवरम, क्या बोला, नहीं बोला, क्या बोला, अंत काले चा मामेवा स्मरण मा मुक्तवा कलेवरम। स्मरण में क्या आया, स्मरण में तो वही आएगा हरे कृष्णा इसकी तो है ना, मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा, हरे कृष्णा प्रभु जी बहुत हो गया बस आपका ना, हरे कृष्णा तो फिर वो मन में वही चल रहा है ना, तो ये हरे कृष्णा कुछ करने वाला नहीं, इफेक्टिव नहीं है। कहते नाम तो लाए पर नाम नहीं आए, नाम आया ही कहां, अभी तो आपने खाली एक तोते की तरह प्रभुपाद कहते थे बोल दिया हरे कृष्णा, लेकिन जब तोता भी बोलता है हरे कृष्णा, लेकिन जब बिल्ली आती है उसकी गर्दन दबाती है तो क्या बोलता है, कै कै कै, भूल गया हरे कृष्णा। आपकी मृत्यु आएगी तो आप क्या बोलोगे, हरे कृष्णा बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, वेंटिलेटर पे लगा के बचा लो, अभी तो प्रॉपर्टी साइन करनी रह गई, बच्चे को देनी है, कहाँ हरे कृष्ण, जब निकला ही नहीं। और सोच तो छोड़ ही दो, सोचना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान कहते हैं अगर मान लो तुम्हारे मुंह से नहीं भी निकला, लेकिन अगर तुमने पूरा जीवन गुरु की भक्ति की है, अगर पूरा जीवन वैष्णवों की भक्ति की है, पूरा जीवन शास्त्र पढ़े हैं, पूरा जीवन हरि नाम जपा है, तो तुम्हें याद आए ना आए, तुम्हारे मुंह से निकले ना निकले, लेकिन मैं वहां प्रकट होकर तुम्हारे स्मरण में आ जाऊंगा। तो गुरु के बिना बड़े बड़े लोग नारद मुनि जैसे लोगों को भी ना एंट्री नहीं मिलती है। सुना दूं पूजित, दो मिनट और याद आ गया ऐसे। नारद पंचरात्र की कथा आती है अध्याय 8 की। नारद पंचरात्र में लिखा है कि एक बार नारद मुनि जो थे उनको एक सभा में बुलाया गया, सभी देवी देवताओं की सभा थी इंद्रलोक में। तो इंद्र देवता ने बोला कि आइए सभी लोग, सभी ऋषि मुनि देवता सभी आओ, 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता आए। जब नारद जी वहां घुसे तो देखा उनका आसन बिल्कुल बाहर वहां चप्पलों के पास लगा रखा है। तो उनको लगा ये क्या मेरे साथ में ऐसा व्यवहार, दुर्व्यवहार, मैं तो सदा नारायण 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 जाप करता हूं, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों। तो उन्होंने पूछा इंद्रदेव से, देवी देवताओं से, मेरा आसन सबसे आखिरी क्यों। बोले क्योंकि नारद जी आपके ना कोई गुरु नहीं है, आपके जीवन में गुरु नहीं है, आपके जीवन में दीक्षा नहीं है, आपके जीवन में दीक्षा मंत्र नहीं है। अच्छा लेकिन मैं तो नारायण नारायण जप करता हूं, बहुत सालों से जप कर रहा हूं, पूरे तीनों लोकों में प्रचार कर रहा हूं। कहा वो ठीक है, लेकिन जब तक आप किसी संप्रदाय से नहीं जुड़ेंगे ना तब तक ये ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है। संप्रदाय विहीना मंत्र निष्फल मतः, संप्रदाय विहीन होने से मंत्र निष्फल हो जाता है। तो आप किसी से तो जुड़िए, या तो लक्ष्मी जी से जुड़िए, या शिव जी से जुड़िए, या ब्रह्मा जी से जुड़िए, किसी से जुड़िए, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। तो नारद जी बोले अच्छा लेकिन मुझे जरूरत क्या है, मैं तो बहुत ही त्रिकालदर्शी देख सकता हूं, सब जगह घूम सकता हूं। तो इस प्रकार का व्यवहार होने पर वो अपने पिता ब्रह्मा के पास गया, ब्रह्मा जी से पूछे क्या ब्रह्मा जी सच में पिताजी मुझे गुरु की आवश्यकता है। पिता ने कहा हाँ तुम्हें गुरु की आवश्यकता है। बोले ठीक है, कल सुबह होते होते जो पहला व्यक्ति मिलेगा वही गुरु जी है ना। अब आप ऐसा मत करना, वो नारद जी थे, कहीं आप भी ऐसे कर लो, सुबह सुबह निकल के पहला जो व्यक्ति मिला वो गुरु जी। नारद जी बोले जो पहला व्यक्ति दिख जाए वो गुरु जी। नारद जी जब सुबह बाहर गए तो देखा एक मछुआरा दिख गया, बूढ़ा व्यक्ति, उससे बोले कि आप मेरे गुरु बनेंगे। तो देख करके इनकी दिव्य शरीर को बोला नहीं नहीं आप तो बड़े ज्ञानी लगते हैं, मैं कैसे आपका गुरु बन सकता हूं, मैं तो मछुआरा हूं, मछली पकड़ता हूं। कहा कि कोई बात नहीं, मेरा प्रण था कि जो भी पहला व्यक्ति मिलेगा वो मेरा गुरु। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है लेकिन गुरु मंत्र दीजिए। बोला अभी मैंने बोला था मुझे कुछ आता जाता नहीं, आपने गुरु बना लिया, अब मैं मंत्र कह दूं। बोले कुछ भी जो सुनाओ। तो बोला हाँ मैंने सुना है हमारे मछुआरे कभी कभी बोलते हैं हरि बोल, तो मैंने सुना है वही मंत्र हो गया हरि बोल। तो ठीक है मंत्र मिल गया, बड़े खुशी से आए, देखा सिंहासन वहां से उठा के ब्रह्मा जी के साइड में लगा रखा है, अरे वाह वाह बैठा दिया। तो जब बैठाने लगे तो ब्रह्मा जी के रुको तुम्हारे गुरु सीट तो मिल गई क्योंकि हमें पता चल गया तुमने गुरु बनाया, लेकिन गुरु के बिना तुम्हें यहाँ बैठने नहीं दिया जाएगा, गुरु की इच्छा के बिना बैठने तक नहीं दिया जाएगा। अच्छा तो गया वापस बुजुर्ग व्यक्ति से बोले चलिए स्वर्ग में। वो बोला मैं बूढ़ा अपने तट के किनारे से नाव तक नहीं चढ़ पाता, तुम स्वर्ग की बातें कर रहे हो भैया तुम जा सकते हो, मैं बूढ़ा हूं मैं नहीं जा पाऊंगा। तो नारद जी ने कहा चिंता क्यों करते हैं गुरु जी, मैं आपको कंधे पे बिठा के स्वर्ग ले जाऊंगा। गुरु जी को कंधे पे बिठाया नारद जी ने, स्वर्ग ले गए। स्वर्ग पहुंचे तो वहां पर बूढ़े व्यक्ति को उतारा, ब्रह्मा जी से कहा देखिए पिताजी ये मेरे गुरु जी हैं, सभी देवी देवता देख रहे हैं 33 करोड़, ये तुम्हारे गुरु हैं? कहा हाँ ये मेरे गुरु हैं। कह रहे ये तो मछुआरा है, हाँ किसने क्या मंत्र दे दिया? कहा हरि बोल। तो नारद जी कहते हैं जो कुछ भी हो गुरु की देह नहीं देखी जाती है, किवा विप्रा किवा न्यासी शूद्र किवा नाए एई वेति तत्वेता से गुरु है। इन्होंने तत्व ज्ञान दिया मुझे, हरि बोल बताया, मैं तो इन्हीं को गुरु मानता हूं। तो है ना जब ये बहस चल रही थी इतनी देर में बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया, अपने शरीर को सुसुंदर बनाया और सबके सामने भगवान भोलेनाथ शिव जी प्रकट हो गए। तो शिव जी जो है उनके भाई भी हैं और शिव जी ने उनको रुद्र संप्रदाय से जोड़ दिया। तो नारद जी एक ऐसे हैं जिन्हें ना दो संप्रदाय में दीक्षा लिया है, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में भी आते हैं नारद जी और रुद्र संप्रदाय में भी आते हैं नारद जी। तो रुद्र संप्रदाय में भी नारद जी पंचरात्र में 8वें अध्याय में वर्णन करते हैं इस कथा में कि गुरु की इच्छा के बिना गुरु के मंत्र के बिना हम चाहे कितना ही भक्ति का दिखावा करें, जब तक हम प्रमाणिक संप्रदाय से दीक्षित भक्त नहीं है हमारे लिए स्वर्ग में भी जगह नहीं है, वैकुंठ धाम तो बात ही क्या है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम श्रद्धावान होकर इस संप्रदाय में जुड़े। आपके पास में अच्छे भक्त हैं हिजगे सचिपति प्रभु नित्यानंद राम प्रभु, ये लोग हमारे भी गुरुजन हैं, हमारे शिक्षाएं देते रहते हैं। तो मैं तो बहुत छोटा हूँ ज्ञान देने के लिए, लेकिन इन्हीं लोगों से सुन सुन के सीख करके जो भी बोला है तो मुझे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा।